इतने गुंजार गाने से आ जाता है। कुमार का गाड़ी डायरेक्शन देती है, जल्दी आओ जल्दी जाओ, इस तारीख पे आना उस तारीख पे जाना, आ जाना कल चले जाना।
राजा पास उनका जन्म हुआ होगा, परंतु सत्युग कब था क्या पता नहीं।
ठीक है,
ये राधा और कृष्ण दो तीन साल साल का फर्क है, ये कब होता
माता की बात है। संगम युग में कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा और राधा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा जरूर अलग अलग चूल्हे हैं। बेसिक ज्ञान में जब आते हैं तो राधा वाली आत्मा पहले आती है, बेसिक ज्ञान ले लेती है तीन चार साल पहले, और कृष्ण के रूप में जिस आत्मा को संसार में प्रत्यक्ष होना है वो तीन चार साल के बाद बेसिक में आती है, इसलिए लिख दिया। यहां तो ज्ञान में पहले आना माना बड़ा, जो ज्ञान में बाद में आया वो छोटा। और जब सारी दुनिया भगाएगी ऐसे आसानी से अपना कोई घर बार छोड़ के भागता है क्या? चारों तरफ दुनिया में ग्लानी होगी, जो ग्लान गायन करने वाले हैं, जो भगवान का गायन करने वाले हैं, ग्लान करने वाले नहीं है, उनको भागना पड़ेगा। बोले ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, ये दुनिया बेकार हो गई, इसलिए मैं भागने का फैसला करता हूं, भाग रहे हो।
आज मेरी नाम कृष्णा, अब तुम शुक्र जाना।
आशा प्रॉब्लम
अष्टदेव में जो आने वाली आत्माएं हैं अभी उनका पहचान कैसे
आपकी परीक्षा क्या है
अष्टमोहा
स्मृति लब्ध 63 जन्म से गीता पढ़ते आए और भगवान ने आखिरी लक्ष्य क्या दिया पुरुषार्थ का नष्ट हुआ स्मृति लब्ध जो आखिरी परीक्षा है उस आखिरी परीक्षा में जो जब से ज्ञान में आता है तब से लेकर पुरुषार्थी जीवन में अंत तक उसका ये लक्षण पक्का होगा क्या देह के पदार्थों और देह के संबंधियों से क्या नष्ट होगा ऐसा कोई रूप देखने में नहीं आएगा जिससे ये साबित हो जाए कि ईश्वरीय कार्य को छोड़ करके ईश्वरीय संबंधियों को छोड़ करके ईश्वरीय परिवार को छोड़ करके और लौकिक परिवार को वो आत्मा समर्थन करती है। आज से अंत तक उन 8 आत्माओं का ये रिकॉर्ड होगा क्या ज्ञान लेने के बाद नष्ट हुआ किस बात से नष्ट हुआ अपनी देह से नष्ट हुआ रात दिन ईश्वरीय सेवा करनी पड़े शरीर भी बीमार हो जाए तो भी ईश्वरीय सेवा करने से इनकार नहीं करे दूसरी बात देह के पदार्थों से नष्ट हो कोई होते हैं ज्ञान में चल पड़ते हैं ज्ञान में चलने के बाद सरेंडर भी हो जाते हैं फिर कहते हैं ये चाहिए इसके बगैर हम नहीं रह सकते वह चाहिए उसके बगैर हम नहीं रह सकते पदार्थों से मोह होने का नष्ट ही नहीं होता वो नहीं होगा और संबंधियों से भी मोह नष्ट होना दिखाई पड़ेगा दूसरी बात ईश्वरीय सेवा का बैलेंस होने का बहुत लंबा दौर और आत्माओं के ऊपर और दूसरी आत्माएं यदा तदा दूसरों के प्रभाव में आकर के कुछ न कुछ ईश्वर बाप की ग्लानि करेंगी दूसरों के सामने लेकिन जो अष्टदेव में आने वाले होंगे वो ग्लानि करते हुए नहीं देखे जाएंगे ग्लानी न करने का रिजल्ट क्या होगा जो ग्लानी करने वाले होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है जो सदगुरु की ग्लानी करते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है सदगुरु निंदक और माने ईश्वर के साकार पार्ट के नजदीक नहीं रह सकते हो साकार इसने ही बन करके नहीं रह सकेंगे और जो महिमावंत होंगे भगवान की महिमा करने वाले होंगे वो जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर आज से अंत तक कैसे दिखाई देंगे सदगुरु की महिमा करने वाले नजदीक दिखाई देंगे या दूर दिखाई देंगे साकार में भी नजदीक दिखाई देंगे। ईश्वर ज्ञान में आए और उनको तलख लग जाएगी, कम नजदीक पहुंचे, दूर रह नहीं सकेंगे। जो अव्यक्तवाणी में अभी बोला, क्या बोला याद है? बाप के बगैर बच्चे रह नहीं सकते और बच्चों के बगैर बाप रह नहीं सकते। उन आत्माओं की ये विशेषता बताई।
मन बुद्धि से
है,
मन बुद्धि से,
मन बुद्धि से,
मन बुद्धि से साकार से नजदीक है।
अगर सिर्फ मन बुद्धि की बात होती तो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं होती है। जगदम्बा बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं हो सकती।
सदाकाल साकार साथ
रहेगा, सदाकाल साकार साथ रहेगा, क्योंकि सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनते। जो सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं वो सदगुरु निंदक परमात्मा बाप के ठौर नहीं पा सकते, नजदीक नहीं आ सकते। अगर तुम्हारी को बोला भी जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, माना माया भी है, वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता।
वर्तमान समय
जो भी अष्टदेव होंगे वो कंधे पे चढ़े चढ़े फिरते होंगे भगवान के, या नजदीकपन महसूस करते होंगे प्रैक्टिकल में?
प्रैक्टिकल में महसूस करते होंगे।
कोई परिवार होता है, परिवार में बच्चे होते हैं, परिवारजन होते हैं, बाप दूर विदेश में चला जाता है, इतना दूर होते हुए भी वो नजदीक होते हैं बुद्धि योग से, या दूर होते हैं बच्चे? क्यों होते हैं? है तो बहुत दूर।
वही पूछ रहा हूँ ना बाबा,
नजदीक का अनुभव कैसे करते हैं?
क्योंकि
प्रैक्टिकल में नजदीक रहे हैं, बल दूर चला जाए तो भी एक आवाज लगाएगा और तुरंत हाजिर हो जाएगा। दृष्टि से नहीं तो वाचा से, वाचा से नहीं तो मनसा से, मनसा से नहीं तो कर्मेंद्रियों से, कोई न कोई तरीके से कनेक्शन जुटा हुआ रहे।
माता जी पूछ रहे बाबा, राम ने शिव बाण धनुष को तोड़ दिया ना, उसका ज्ञान का बेहद अर्थ क्या है, ये सब पूछ रहे।
कहते हैं दधीच ऋषि की हड्डियों से धनुष बनाया गया। अब यहाँ ज्ञान में दधीच ऋषि कौन है?
ब्रह्मा
बाबा ने जो पुरुषार्थ किया हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया या मन के संकल्पों को तीव्र रूप से चलाने का पुरुषार्थ किया? मनसा का तीखा पुरुषार्थ नहीं किया? उनसे ज्यादा मनसा तीव्र चलती थी मम्मा की, हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया बच्चों की सेवा, बच्चों की लैट्रिन भी उठाई बाबा ने। तो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने के कारण दधीच ऋषि की हड्डियों का धनुष अर्थात शरीर रूपी रथ, उस शरीर रूपी रथ ने जितना हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया उससे जो धनुष बनाया गया, धनुष होता है ना, तो धनुष को जैसे जैसे खींचेंगे तो दोनों बाजू लपेंगे, फिर उसको ढीला कर देंगे दोनों फिर फैल जाते हैं, ऐसा लचीला धनुष था शरीर रूपी धनुष। कहो रथ कहो शंकर चाप जहाज कहो बातें की, चाप माना धनुष, उसको धनुष भी कहा जाता है, उसको जहाज भी कहा जाता है, शरीर रूपी नैया भी कही जाती है। एक नैया में बिठैया आत्मा होती है और एक होता है नैया का खिवैया, जहाज का खिवैया, जहाज का मुख्य चालक संचालक, इसको रथ भी कहते शरीर रूपी रथ। तो जो दधीचि ऋषि का धनुष था हड्डियों का, उसको रावण भी नहीं हिला सका, रावण भी इतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सका कि वो धनुष टूट जाता। माना उस शरीर रूपी रथ से जो किया हुआ पुरुषार्थ है उसको क्रॉस कर जाता, रावण भी इतना बलवान नहीं हिला भी नहीं सका। और राम सीता के लिए क्या गए हैं, सीता के लिए कहते हैं कि जब धरणी में लिपाई कर रही थी वो बरसी है, तो उस धनुष को यूं हाथ में उठा लिया एक हाथ से और दूसरे हाथ से जमीन की लिपाई को तय कर दिया। उसी धनुष को राम ने तोड़ दिए, तोड़ देने का मतलब हुआ कि ब्रह्मा ने जितना अपने शरीर रूपी रथ से पुरुषार्थ नहीं कर पाया उससे जास्ती राम वाली आत्मा ने अपने शरीर रूपी रथ से पुरुषार्थ करके दिखा दिया। इसलिए कहते हैं दधीचि ऋषि की हड्डियों को से बनाए हुए रथ को राम ने तोड़ा और किसी ने नहीं तोड़ा। और ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है औरों की जो बीच में याद आके इंटरफियर करती है ना, और बाबा की याद करनी पड़ती है, बाबा की याद अपने आप नहीं आती, बाबा की याद करनी पड़ती है और औरों की याद ऑटोमेटिक आ जाती है। उसका मूल कारण ये है कि द्वापर युग शुरू हुआ तो माया का राज्य शुरू हुआ, जो भी मायावी विधर्मी मनुष्य आत्माएं थी वो संघ के रंग श्रेष्ठ जन लोग, तो जहां जहां जिनके साथ आकर्षित हुए वो आत्माएं आराम से हमें अभी छोड़ने वाली नहीं है। वो कह रही है कहाँ जा रहे पहले हमसे तो निपटो। तो भगवान बाप को याद नहीं करने देती माया। माया माने कोई माया भी पुरुष है, कोई माया भी स्त्रियां हैं, कोई माया भी पदार्थ है, जिनकी याद बरबस आ जाती और भगवान बाप याद नहीं आते। वो खींच के याद करना पड़ता है। जब ये 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो जावे तो फिर याद खींच जावे। याद खींच के नहीं करनी पड़ेगी, सहज याद हो जाएगी। और
जैसा जिसने खेल खेला
वैसा उसको प्रतिफल मिल जाता है। पुरुषार्थी हो उसके बारे में शुभ संकल्प करना है या अशुभ संकल्प करना है उसके बारे में संकल्प करना ये कब शरीर छोड़ेगा ये तो अशुभ हो गया। अगर शरीर छोड़ देगा तो 5-6 साल तो बच्चा बनना पड़ेगा फिर पुरुषार्थ तो कर नहीं सकेगा तो ये तो अच्छा संकल्प नहीं हुआ। गुंजारदादी के लिए सोचते हो कोई अरे गुंजारदादी के द्वारा जो पाठ चल रहा है ये कब खत्म होगा अरे तुमको क्या परेशानी आ रही है अच्छे अच्छे पॉइंट सुनने को मिल रहे हैं धारणा के पॉइंट सुनने को मिल रहे हैं ऐसा संकल्प क्यों करते हो कि गुंजारदादी शरीर छोड़ रहे हो
बाबा अभी 1976 से लेकर जो ज्ञान में चलते हैं
तो अभी 76
से
76 से
ज्ञान में चलते हैं
1976 से
हाँ ज्ञान में चलते हैं अभी तो बहुत बुरे बन गए लेकिन जो लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं तो नौजवान तो दूसरे कोई आत्मा आएंगे क्या यही तरह से
बूढ़े हैं वो जो बूढ़ों का कंचन गाया नहीं हो सकता है जो बूढ़े हैं उनका कंचन गाया नहीं हो सकता अथवा जो बच्चे हैं 10 साल के 12 साल के उनका कंचन गाया नहीं हो सकता है ये तो नहीं कहा कि उम्र के आधार पर कंचन गाया होनी है पुरुषार्थ की बात है जो आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ में तीखे टिकेंगे उनका कंचन काया होगा आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ में नहीं टिकेंगे देवान में आते रहेंगे तो उनका कंचन काया नहीं होगा।
शरीर वैसे ही रहते हैं
नहीं बनेगी, आपकी की स्थिति वाली वाली बनेगी, आत्मा स्वयं स्थिति में स्थित होगी तो स्वर्ग में जाने योग्य शरीर बनेगा या नरक वाला शरीर रहेगा, क्यूरो वाला शरीर रहेगा, स्वयं स्थिति की बात है। ये स्वयं स्थिति बड़े से बड़ी दवाई है, वो योग करते हैं, आसन चढ़ा लगाते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, वो इसीलिए तो चढ़ाते हैं शरीर स्वस्थ बने, वो उनका योग घोटा है। आज तक कोई भी कच्चर काया वाला बना नहीं, लेकिन जो भगवान राजयोग सिखाते हैं वो ये नहीं कहते बूढ़ों को नहीं सिखाऊंगा, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, दूल्हा हो, लंगड़ा हो, कोई कैसा भी हो, ये ईश्वरीय ज्ञान सहज राजयोग सबके लिए है और सबके लिए गारंटी है कि जो आदमी की स्थिति में टिकेगा, भगवान बाप को एक को याद करेगा, उसकी कल्चर काया इसी जन्म में बनेगी।
तो हमको अभी बहुत हमको बुद्धि में एक बात आता है,
क्या
तो हमको कोई बिठाता है तो बूढ़े होते हैं तो आने वाला जो नारायण होता है तो नौजवान ही आता है, तो शुक्र कैसे करते हैं
जो नौजवान नारायण बताते हैं। ब्रह्मा बाबा की आयु 47 में कितनी थी? 60 ईयर्स। 47 में ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी थी? 60 ईयर्स। और 67 में 20 साल के बाद कितनी हो गई? 80 ईयर्स। 80 ईयर्स में उन्होंने शरीर छोड़ा। जो राजयोग था और जो ज्ञान था वो परिपक्व तो नहीं था, पक्का ज्ञान था, पक्का योग था, या अधूरा योग और अधूरा ज्ञान था? अधूरा योग था, अधूरा ज्ञान था। क्यों? क्योंकि जो भगवान का सच्चा पार्टधारी है उसकी पहचान उनको नहीं थी। जब भगवान के सही पार्ट की ही उनको याद नहीं, पहचान नहीं हुई, तो फिर योग कैसे लगेगा सच्चा? उन्होंने बिंदु को याद किया और उनके फॉलोअर्स ने भी किसको याद किया? बिंदु को याद किया, तो जड़त्व की यादगार होगी। जड़ को याद करना कोई योग नहीं है, हमें चैतन्य से प्राप्ति करनी है, चैतन्य को याद करना है, और चैतन्य को याद करेंगे तो चैतन्य भगवान से हमको सच्चा ज्ञान मिलेगा। जड़ मूर्तियों से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में जड़ मूर्तियां ऋषि मुनियों ने तैयार की सबसे पहले, आज से 2,500 साल पहले। उन जड़ मूर्तियों के आधार पर उन्होंने शास्त्र बनाए, पहले मूर्तियां बनी, बाद में शास्त्र तैयार हुए उन मूर्तियों को देख करके। तो वो शास्त्रों का ज्ञान सच्चा हो गया क्या? जड़ मूर्तियों से जो ज्ञान निकलेगा वो सच्चा नहीं हो सकता। भगवान स्वयं आकर के सृष्टि पर चैतन्य रथ में प्रवेश करता है और ज्ञान सुनाता है, और ज्ञान अधूरा नहीं सुनाता कि ब्रह्मा के मुख में आकर के ज्ञान सुनाया और बोल भी दिया। क्या अभी इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे? किस समय? इस समय ब्रह्मा के मुख से सुना रहे थे, उस समय बताया कि इसे गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत क्यों नहीं कहेंगे? अमृत पी करके देवताएं अमर हुए तो अमर क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत जो है वो मंथन करके निकलता है। शास्त्रों में लिखा भी है, सागर मंथन हुआ अमृत कलश निकला। तो मंथन करने करने के बाद अमृत कलश निकलता है। ब्रह्मा लाला के मुख से जो बोल दिया तो ब्रह्मा कुमार कुमारों ने सुन लिया, उसका बुहार क्या है वो किसी की बुद्धि में बैठा ही नहीं, ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठा। ऐसे ही घोषणा कराई थी संक्षिप्त में दुनिया का विनाश हो जाएगी, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, चित्रों में छपाई दिया, ज्ञान आपको पत्रिका में छपाई दिया, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दे दिया, अखबारों में भी छपा दिया था उस समय, क्योंकि सही बात बुद्धि में नहीं होती। अरे विनाश इतनी बड़ी दुनिया का कोई चुटकी बजाते ही हो जाएगा क्या? टाइम लगेगा कि नहीं? मकान बनाने में भी टाइम लगता है तो मकान बिगाड़ने में भी टाइम लगता है। मुरली में एक तरफ बोला हुआ कि विनाश ज्वाला रुद्रज्ञानी यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई, यज्ञ कुंड के आसपास बैठने वाले ब्राह्मणों को पहले आग लगेगी कि पहले दुनिया को आग लगेगी? तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी कि संक्षेत्र में जो ब्राह्मणों की दुनिया ब्रह्मा द्वारा स्थापन हुई उस दुनिया में विघटन शुरू हो जाए, दो पार्टियां बन गई। दूसरी पार्टी का उन्होंने खुद ही नाम दे दिया शंकर पार्टी। अरे शंकर पार्टी, अरे शंकर पार्टी, अरे कान बंद करो मुसलमान, शूटिंग करो, अल्लाह अकबर, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो दो पार्टियां हो गई। ये विनाश शुरू हो गया ब्राह्मणों की दुनिया में, सख्त विरोध हो गया। उस विनाश की बात कही थी कि संचेतन से ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा और लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। संख्यासठ की वाणी, संख्यासठ से उल्टा चक्र घुमाएंगे तो 10 वर्ष कम रखो, पूरा चक्र मत करो तो संक्षेत्र आता है। संक्षेत्र में लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना। बच्चा जन्म लेता है तो बाहर संसार में प्रत्यक्ष ही तो होता है, तभी तो बाहर जाता है। जन्म लिया वो हद का जन्म है और ये बेहद का दिव्य जन्म है। भगवान भी शक्ति पर आते हैं तो दिव्य जन्म लेते हैं, कोई स्थूल गर्भ का जन्म छोड़ दे थोड़े लेते हैं। तो ब्रह्मा ने और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ज्ञान का मंथन नहीं किया। वो मंथन न होने के कारण अमृत रस नहीं कहा जा सकता। अमृत रस कब निकलता है? जब जो भी मुरलियां सुनाई गई उन मुरलियों की गहराई में उसमें मनन चिंतन मंथन करके नए नए पॉइंट्स निकलते, नई नई बातें निकलती है, शास्त्रों के सारे राज क्लियर हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों से कहो शास्त्रों में क्या सच्चाई है, तो मैं शास्त्र सब पूछ। अरे दुनिया मान लेगी इस बात को? शास्त्र सब झूठे हैं इतना कहने से तो दुनिया नहीं मानेगी। अगर शास्त्र सब झूठे ही है तो मुरलियों में उन शास्त्रों की बातें क्यों बोली गई? शास्त्रों में सच्चाई है ना, तब तो शास्त्रों की बातों को भगवान ने उठाया। अभी अभी एडवांस ज्ञान मिलने से उन शास्त्रों का सारा अर्थ क्लियर होता है। मुरली में भी ये बात बोली। क्या मुरली में भी बोला है? रामायण में, महाभारत में, भागवत में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको तुम इस समय टैली कर सकते हो। वर्तमान संगम युग की जो पार्ट चल रहा है उस पार्ट से तुम उसको टैली कर सकते हो, एक एक बात टैली कर सकते हो। टैली करने की दरकार नहीं है, फालतू में माता पच्ची करने से क्या फायदा, अपना पुरुषार्थ करें। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उन बातों को वर्तमान संगम युग की बातों से टैली किया जा सकता है। वो यहां की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, रामायण की यादगार इसी समय की है, महाभारत की यादगार इसी समय की है, देवासुर संग्राम में जो भी बातें लिखी हुई है वो सब इसी समय की यादगार है, भागवत की बातें भी यहां की यादगार है। पहला जन्म तो तब कहा जाएगा जब निरोगी काया बने। क्या आत्मा जो है वो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है जन्म लेने से पहले, तो उसे जन्म कहा जाता है क्या? गर्भ होता है मां का, आत्मा आती है गर्भ में प्रवेश करती है, प्रवेश करने से 4 महीने पहले वो व्यक्ति वहां जिंदा होता है, व्यक्ति जिंदा है और 4 महीने पहले से मां के पेट में गर्भ तैयार होता है उसके संस्कारों के अनुसार। तो गर्भ धारण किया उसको भी जन्म नहीं कहेंगे, उस गर्भ में आत्मा आके प्रवेश कर देती है, शरीर छोड़ देती है उधर और यहां प्रवेश कर जाती है तो भी जन्म नहीं कहा जाता। जब बच्चा बाहर आता है संसार में प्रत्यक्ष होता है तो कहा जाता है जन्म। यहां भी ऐसे ज्ञान में आने मात्र से कोई का जन्म नहीं पक्का, क्योंकि जन्म तो शरीर के द्वारा माना जाता है, आत्मा बिना शरीर के जन्म धारण करती है क्या? आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है और शरीर छोड़ती है तो मृत्यु कहा जाता है। तो जन्म असली तब कहेंगे पहला जन्म जब ये शरीर के 5 तत्व भी निरोगी बने। जो 5 तत्वों को निरोगी बनाने के लिए ऋषियों मुनियों ने कितनी तपस्या की, कितना हठयोग किया, प्राणायाम किया, कितने आसन लगाए, उल्टे होके खड़े रहे, परिवर्तन नहीं हुआ शरीर से। बाप कहते हैं ये सब देह के योग है, देह के योग विनाशी है, देह भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहा जाता है मन बुद्धि को, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे तो ये मन बुद्धि बीज है, ये शरीर रूपी वृक्ष है। मन बुद्धि एकाग्र होगा स्वस्थ हो जाएगा तो ये शरीर भी स्वस्थ होने। उनके 70 साल हो गए, 70 साल से हम राजयोग सीख रहे हैं। अरे 70 साल से राजयोग सीख रहे हैं, जब समझा ही नहीं तो सीखना कैसे होगा? पहले कान से सुना जाता है, फिर बुद्धि से समझा जाता है, समझने के बाद फिर प्रैक्टिकल किया जाता है। तो सुनना सुनाना कब तक हुआ है? 76 तक सुनना सुनाना ही करते रहे, बुद्धि में समझा किसी ने समझा नहीं कि भगवान किसे कहा जाए। वास्तव में विनाश कैसे और कब होगा, वास्तव में नई दुनिया की पालना कब होगी, कैसे होगी, किन के द्वारा होगी, जब बुद्धि में बात समझ में ही नहीं बैठी तो प्रैक्टिकल में राजयोग कैसे सिद्ध होगा? तो ज्ञान में आने मात्र से कोई नया जन्म साबित नहीं हो जाता। नया जन्म तब कहेंगे जब शरीर के 5 तत्व भी सात्विक बन जाए। पहले मन को बुद्धि सात्विक बने। जो भी संपर्क संसर्ग में आने वाली आत्माएं हैं, कोई भी उंगली ना उठाएगी हमको दुख देने वाला। तब कहेंगे आत्मा सात्विक सतोप्रधान बनी। ऐसा बाप खुश, बाप पसंद, परिवार पसंद, ब्राह्मण परिवार में सब पसंद करे। ये तो जैसे पक्का ब्राह्मण सो देवता बना। और स्वपसंद अपने अंदर भी लगे कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं जैसा बाबा बता रहे हैं वैसा ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंदर से आत्मा संतुष्ट रहे, असंतोष ना आए। तो स्वपसंद, बाप पसंद और परिवार पसंद। बाकी दुनिया तो कभी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि दुनिया वालों को मनुष्य से देवता बन नहीं देगी, वो तो ग्लानी करेगी।
तो नशा चलेगा इसका मतलब क्या
है?
अपनी घोट को नशा चलेगा इसका मतलब क्या?
इसका मतलब ये है अपनी घोट को नशा चढ़े तो अपनी भांग अपने आप घोटता है, उसको ज्यादा नशा चढ़ता है। भांग किसी ने और ने घोटी और पीता कोई दूसरा है, तो पीने वाले को जितना नशा चढ़ेगा उतना उससे ज्यादा नशा घोटने वाले को चढ़ेगा। मतलब जो ज्ञान का मंथन करेगा वो ज्यादा नशा चढ़ेगा, और मंथन किया हुआ जो ग्रहण करेगा उसको उतना नशा नहीं चढ़ेगा।
अब सभी भी
है,
अब सभी भी जो राम बाप ने मन चिंतन अंतर किया वही चिंतन कर रहे हैं ना?
कर रहे
तो
उतना नशा नहीं चढ़ सकता जो अंत तक अटल निश्चय बुद्धि होकर के रहे, ध्रुव तारा बन के रहे, कुछ न कुछ अनिश्चय बुद्धि होते रहते। चलो हो गया। पत्नी उसे कहा जाता है जो पति को फॉलो करे। अगर फॉलो करती है रचना रचयिता को फॉलो करती है, बात मानती है तो पत्नी है। 100% बात मानती है तो पति के पुरुषार्थ का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। अगर 50% बात मानती है और 50% नहीं मानती, 50% बातों को फॉलो करती है 50% बातों को फॉलो नहीं करती, तो उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए या पति के पुरुषार्थ का आधे का आधा मिलना चाहिए? ये हिसाब है।
बाबा
हाँ,
साइंस तो चांद पे गया है, साइंस साइंस जो लोग आए वो चांद पे जाके आए हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर में जो ट्रायंगल है उसके अंदर संशोधन क्यों नहीं करते?
ब्रह्मा
ट्रायंगल आप ही नहीं कहते साइंस?
कहां चंद्रमा और कहां सागर? किसके लिए गाया जाता है? किसकी थाह ली जा सकती है और इसकी थाह नहीं ली जा सकती? चंद्रमा के लिए कहते हैं कि चंद्रमा की थाह ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती? क्या कहते हैं? है? चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, पहुंचे हैं, लेकिन सागर की थाह कोई नहीं ले सका आज तक। जो बड़बूला ट्रायंगल भी है, साइंसदान चाहे जितने भी साइंस में आगे बढ़ जाए लेकिन वहां हार जाते, उस हिस्से को छोड़ दिया। उन्हें पराबैंक मनोवैज्ञानिक शक्ति का पता ही नहीं।
बाबा
ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रिजल्ट सब आना शुरू होंगे गुजरात के। माने अभी त्रिदेव और अष्टदेव का रिजल्ट शुरू नहीं हुआ। क्यों? त्रिदेव और अष्टदेव कौन है ये आपको पता ही नहीं चला अभी।
बाकी
अरे ये कोई इसका कोई हिसाब है? आठ प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो अरे बाकी के कब? फिर सौ प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना? अरे और बाकी के 16,000 कब? आपके प्रश्न का जवाब तो हो गया कि कब से रिजल्ट शुरू होगा निकलना। तो रिजल्ट तो निकल रहा है। दुनिया में भी परीक्षा होती है तो जो अव्वल नंबर पास होता है उसको पहले आउट कर दिया जाता है, फिर नंबर बार प्रत्यक्ष कर दिए जाते हैं पास विधान। ऐसे यहां भी है और अभ्यतवाणी में बोल भी दिया है और जो नंबर बचे हुए हैं वो जल्दी जल्दी अब आउट होंगे, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। अभी टू लेट का बोर्ड लगा है क्या? सूर्यवंशियों में जो अव्वल नंबर पार्ट जारी है उनका पार्ट खुला है, टू लेट का बोर्ड लगा है, वो लेट का बोर्ड लगा है लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी भी चाहे तो अष्टदेव में 9 सीट वो 6 सीट खाली है। और
राधा कृष्ण समान जो बच्चे होंगे एक दुनिया में जन्म लेंगे अपना दुनिया में जैसे पीरियड
राधा कृष्ण नई दुनिया में जन्म लेंगे पुरानी दुनिया में? राधा कृष्ण कहाँ जन्म लेंगे? पुरानी दुनिया में जन्म लेंगे। पुरानी दुनिया वाले उनको देख सकेंगे? पुराने शरीर वाले उनको देख सकेंगे? हाँ तो उनका नई दुनिया में जन्म होगा ना,
इसीलिए साढ़े
4 लाख। जो नई दुनिया होगी पहले छोटी होगी फिर बड़ी होगी? छोटी होगी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 9 लाख भी हो जाएंगे।
हाँ? बाबा यहाँ पे नीलकंठेश्वर का मंदिर है, बहुत नीलकंठेश्वर का मंदिर है,
नीलकंठेश्वर
बहुत बड़ा मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उससे बड़ा शिवलिंग का यहाँ पे मंदिर है। उसका क्या है? उसका क्या उसका रहस्य क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग से भी बड़ा ज्योतिर्लिंग है।
बड़ा काम क्या है जो? चलो उस मंदिर की बात छोड़ दो, जो और जो शिव के मंदिर हैं उनमें शिव के मंदिरों में क्या बड़ा काम दिखाया गया? शिव के मंदिर में जो शिव का काम दिखाया गया है, स्थिति दिखाई गई है, वो क्या बड़ी स्थिति दिखाई गई? कीचड़ में है लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी उपराम स्थिति। तो उसका खुलासा नीलकंठ मंदिर में कर दिया गया कि सारा उन्होंने विष पी लिया फिर भी मस्तक में उसका कोई असर नहीं हुआ। बुद्धि प्रभावित नहीं हुई, नहीं तो विषयी विकारी जीवन जिसे ब्रह्मा कुमार का बनता है जिन दिनों में, उन दिनों बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है कि ठहरा रहता है, उड़ जाता है। न सुनने की इच्छा होती है न सुनाने की इच्छा होती है। लेकिन नीलकंठ के पार्ट की ये यादगार है, विष तो पिया लेकिन किस तरह पिया? इस तरह पिया कि मन बुद्धि के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो पाया।
और ब्राह्मण
सुदेवता
नहीं बन
पाएंगे, ब्राह्मण सुदेवता नहीं बन सकेंगे अथवा संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता नहीं बन सकेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की भी तो नौ पुरियां गाई हुई है, तो जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ पुरी के होंगे वो बचेंगे, निष्कृष्ट पुरियों के होंगे तो नहीं बचेंगे।
गौरी शंकर में गौरी लक्ष्मी की आत्मा है, गौरी शंकर कहा जाता है, तो गौरी लक्ष्मी की आत्मा है, गौरी किसकी आत्मा है, लक्ष्मी की आत्मा है,
गौरी गौरी की आत्मा है। और
गौरी शंकर में गौरी को पहले क्यों रहता है,
क्योंकि गौरी के बगैर शंकर जी भी गोरे नहीं बनते, उनके दोनों तरह के चित्र दिखाए जाते हैं, दाढ़ी मूछ वाला काला भयंकर रूप भी दिखाते हैं, फिर उनका सौम्य रूप भी दिखाते हैं।
शंकर में तो शिव की प्रवेशता है, शंकर में शिव जी की प्रवेशता है,
हाँ प्रवेशता भी होती है और फिर संपन्नता भी होती है, ऐसे थोड़े ही कि बाप सदैव ही प्रवेश होकर के रहता है, नहीं तो ये गायन कैसे होता है। शिवशंकर यही कहे, क्या कारण है, जरूर शंकर ने याद का ऐसा पुरुषार्थ किया है लवलीन होने का कि जो शिव की स्टेज सो शंकर की स्टेज, इसलिए शिव के साथ एक ही देवता को मिलाया जाता है, न विष्णु को मिलाते हैं न ब्रह्मा को मिलाते हैं न और कोई 33 करोड़ देवताओं में से किसी को मिलाते हैं।
पोस्ट करने के बाद भी हिम्मत नहीं कर रही इधर आने का, क्योंकि तुम्हारी संख्या बहुत कम
होती है, तो या तो उन आत्माओं में भी कोई कमजोरी हो सकती है, या तो कोर्स कराने वालों में इतनी अशक्ति है कि फोर्स नहीं भरते हैं।
नहीं बाबा, वो हिम्मत ही नहीं कर रहे सीढ़ी सुनने के लिए, घर पर भी नहीं आना चाहते।
हाँ, जो कोर्स कराने वाले हैं उनमें भी तो कोई कमी होगी, बच्चा पावरफुल कब पैदा होगा है? जब माता पिता पावरफुल हो तो बच्चा भी पावरफुल हो, बीज ही कमजोर है।
नहीं, वो आने वाली आत्मा ही कमजोर है,
वो आत्मा अपने आप कमजोर हो जाती है, पिता पावरफुल है, रचयिता पावरफुल तो रचना भी पावरफुल। उदाहरण के लिए धर्म पिताओं को देख लो, जितना पावरफुल धर्म पिता उतनी पावरफुल उनकी प्रजा फॉलोअर्स।
पहले से ज्ञान सुनाते जाते हो, तुम्हारे बाबा का ही आखाने का हाल बताते,
तो जो रचयिता बन के बैठते हैं उनमें इतनी पावर होनी चाहिए ना, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे।
वही उनको बोले कि आप तो पूरा सुने भी गलत तो नहीं समझ सकते, इसके लिए फिर सुनने के लिए आना चाहिए।
वो भी स्टेज आवेगी कि सुनना सुनाना ही बंद हो जाएगा, दृष्टि मात्र का ही असर हो जाएगा। जैसे नेहरू जी के कोई भी कितने भी विरोधी होते थे, पीछे से बहुत विरोध करते थे, और जब सामने वो भाषण देने आते थे तो उनके अनुकूल बन जाते थे। ये कौन सी ताकत थी? वाइब्रेशन की पावर थी, आत्मा में पावर थी।
और बाबा भगवान ज्ञान में तो हम चल रहे हैं, और ज्ञान तो रोज अच्छा लगता है, पर उसमें कुछ परिवार वाले यानी कोई सहयोग देते कोई नहीं देते, कोई ज्ञान में चलते कोई नहीं चलते, बच्चे भी अभी शादी शुदी तो आते हैं तो उनके भी अभी कहीं समाज वाले पूछते रहते क्या करना कैसे करना, प्रॉपर्टी के लिए भाई घर नहीं बनाना ऐसा कहते, फिर वो रहने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, और सर्विस करते हैं तो समझो तंग भी हो जाते हैं, यानी टेंशन बहुत आता है, पर सर्विस छोड़ने की इच्छा होती है, ये ज्ञान ऐसे जैसे जैसे अपन ज्ञान ले रहे थे, तो ऐसे समझ में क्या हल करना कैसे करना चाहिए।
मुरली में बाबा ने ये हमारे लिए नहीं बोला, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, फालतू बात, असली ज्ञान तो हमने सुना हुआ है, सच्चाई क्या है वो तो हमें पता पड़ गई ना,
तो हम झूठ से प्रभावित क्यों? हियर नो इविल किसके लिए बोला गया? और
बाबा सबसे पीछे आने वाले पिछाड़ी में आने वाले आत्माओं का क्या हिसाब किताब रहेगा?
अच्छा देव सबसे पीछे आते हैं कि आगे आते हैं?
विनाश के समय जब परम धाम से नीचे आते हैं तो पाप पुण्य के क्या हिसाब रहेगा? कर्म ही नहीं करते है ना,
वो ही हिसाब होगा। जो आज सो अंत
दो चार साल हमारी शरीर से लगे तो अभी दिन पे दिन क्या होता है, वह ना जा रहा है
तो अच्छी बात है ना।
करना ही करना क्या छोड़ना
है? कहते हैं ना बिनु बैराग विवेक न होई। जब तक बैराग नहीं आएगा तब तक ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल रूप धारण नहीं कर सकता।
नहीं बाबा, नौकरी करना है क्या छोड़ना है? करना तो नहीं मालूम हो रहे, चार पांच साल तो लगे। अरे ज्ञान में बिजी रहना ऐसा नहीं मालूम होता, उसने ये भी नहीं है ना, सोच भी नहीं है।
एक है आसुरी गवर्नमेंट की नौकरी और एक है इजुरी गवर्नमेंट की नौकरी। नौकरी तो दोनों है, तो आप नहीं जानते कि श्रेष्ठ कौन सी नौकरी है और भ्रष्ट कौन सी नौकरी है। लेकिन ये भी कहते हैं कि वो नौकरी छोड़ देना तो आसान है, लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट की नौकरी पर काबिज होना वो फिर माया छोड़ दे तो बड़ी बात है। नहीं तो नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ माया पकड़ लेती है। घर में बैठेंगे बेकार तो क्या हुआ? माया का कारखाना तैयार हो जाएगा।
बाबा सेंटर पर जो बैठे वाले जो है ना ब्रह्मा कुमार कुमारी, वो ज्ञान की चर्चा के लिए क्यों नहीं आते या बुलाते क्यों नहीं? क्या कुछ सेंटर पर बैठने वाले जो है
उनका नारा क्या है? उनका नारा है अंधेरा कायम रहेगा। दादी का नारा क्या है?
अंधेरा कायम
ज्ञान सुनने देगी तो परंपरा डाली हुई है कान में उंगली दे लो, न सुनेंगे और न दूसरों को सुनने देंगे।
हो गया।